One morning,
एक सुबह एक परिवार धर्म सिद्धांत को हर समय एक तरह पढ़ने की इकट्ठा हुई. जब वह इकट्ठा हुई, पिता ने अच्छे स्थिति को नहीं महसूस किया. कुछ परिवार के सदस्य उचित नहीं लग रहे थे. उन्होंने पारिवारिक प्रार्थना किया, और जब उन्होंने धर्म सिद्धांत को पढ़ने के को शुरू किया, पिता ने देखा कि उसके पुत्री ने अपने साथ अपनी धर्मशास्त्र को नहीं लाया. उसने उसको आमंत्रित किया कि वो अपने कमरे में जाए और धर्मशास्त्र लाए. उसने वैसा नहीं किया. क्या यह हमें अभी करना जरूरी है? पिता ने अपने आप से ही सोचा कि शैतान बड़ा डल रहा है ताकि वो धर्म सिद्धांत को पढ़ नहीं सके. पिता शांत रहे की कोशिश किया. हाँ, हमें यह अभी करना है, उसने कहा. मैं ये अभी नहीं करना चाहती हूँ, पिता ने अपनी शांति को दिया ऊँची आवाज़ में और कहा, यह मेरा घर है और हम हमेशा धर्म सिद्धांत को पढ़ेगा. उसके अंदाज और आवाज़ के शब्दों के ने पुत्री कष्ट दिया, और अपने हाथों में धर्म सिद्धांत को लेकर उसने परिवार को छोड़ दिया. अपने कमरे में दौड़ गई और दरवाजे को जोर से बंद किया. उसी समय परिवार ने धर्म सिद्धांत को पढ़ना बंद कर दिया. कोई शांति और थोड़ी सी भी प्यार घर में महसूस नहीं हुआ. पिता ने जाना कि उसने अच्छा नहीं किया. उसने प्रभु से मदद की भीख मांगी, जानते हुए कि उसने अपने की पुत्री का दिल दिखाया. उसने प्रभु के कहा कि वो वही प्यार और शांति को घर में वापस लाए और परिवार को उसी तरह इकट्ठा कर धर्मशास्त्र को वापस पढ़ने के लिए. जब वो प्रार्थना कर रहा था, उसने उसके मन में एक सुझाव आया, जाओ और कहो कि मुझे माफ़ कर दो. उसने प्रार्थना को जारी रखा. प्रभु ने आत्मा को वापस बुलाया अपने घर में. एक बार फिर एक सुझाव आया, जाओ और कहो मुझे माफ़ कर दो. वो एक अच्छा पिता बनना चाहता था और अच्छा करना चाहता था, तो वो खड़ा हुआ और अपने पुत्री के कमरे में गया. उसने कई बार दरवाजे को खटखटाए और जवाब नहीं दिया. जैसे उसने धीरे से दरवाजे को खोला और अपने पुत्री को उसके खाट पर सिक और रोते हुए देखा, वो उसके पास झुक गया और धीमा हुआ और जटिल आवाज से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं माफ़ी मांगते हूँ वो करने के लिए. और फिर एक बच्चे के जबान से वह पद पढ़ाया ईश्वर ने, जो वह उसे पढ़ाना चाहता था. मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था. उसने पिताजी के ने बेकसूर बच्चे के नहीं हाथों को एक एक बात एकदम सिद्धांत के पन्नों को बदलते हुए देखा. प्राकृतिक स्वभाव परमेश्वर के दुश्मन है और आदम के समय से है और रहेगा हमेशा और हमेशा. अगर वो पवित्र आत्मा के फुसलाने से विनम्र और प्राकृतिक स्वभाव का द्वारा किया और प्रभु मसीह के प्रश्चित करने से संत बन गया और बच्चों की तरह आज्ञाकारी विनीत दीन मनशील प्रेम के पर सभी चीज़ों के देने को तैयार, जिसे प्रभु ने अच्छा समझ से उसे के लिए एक बच्चे की तरह अपने पिता को पेश किया, अभी उसी उसके खाट से पास चुके हुए उसने विम्रता को महसूस किया. जब उसने अपने आप से सोचा, धर्म सिद्धांत मेरे लिए लिखा गया है, उसने मुझे एक महान उपदेश को सिखाया. फिर उसने अपने आंखों को उसकी ओर किया, कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो पिताजी. उसी समय उसके पिताजी ने जाना कि उसने उस धर्म सिद्धांत के वर्ष को उसके ऊपर नहीं कहा रहा, मगर उसने उसके अपने ऊपर लागू किया था. उसने अपने बहनों को खोला और उसके जगड़ लिया. प्यार और शांति पुनस्थापित हुआ. परमेश्वर और पवित्र आत्मा के शब्दों से जो मिलाप वापस आया, था उस अच्छे समय पर। धर्म सिद्धार्थ, जो उसके पुत्री ने खुद अपने धर्म सिद्धार्थ से याद किया था, ने उसके दिल को छू दिया पवित्र आत्मा के प्रभाव से। भाइयों, हमारा घर ऐसा होना चाहिए जहाँ पर पवित्र आत्मा रह सके। फिर तुम्हारे घर की पवित्र मंदिर के पवित्र से तुलना की जा सकती है। यहाँ पर कोई स्थान नहीं है हमारे घर में प्रात्रिक स्वभाव लिए। प्राकृतिक स्वभाव तैयार है जो अपने अपराध छुपा लेता है। यह जो अपने घमंड बढ़ाता है, अपने झूठा कार्य को या तो कर्णों को या शक्ति से, ये जबरदस्ती से मनुष्यों के आत्मा पर करता है। और जब वो करता है, बुराई की खड़ तक रुक जाओ, स्वर्ग उनसे दूर हो जाती है। प्रभु के आत्मा दुखी हो जाती है, और जब वो दूर चल जाती है, प्रभु तो ये आत्मा के लिए आमीन। हम जो आयरोनिक ये मलकेज़ेदेक पुरोहित रखते हैं, हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी शक्ति या प्रभाव पुरोहितों के सद्गुण को तेज नहीं पहुंचा सकती। सिर्फ मार्ग से देर तक चलने से, दयालुपन और कोमलता से, और अच्छा प्यार से, कृपा से, और सही ज्ञान से, जो हमारे आत्मा को बहुत बढ़ती है बिना कपर और चाल के। मुसीबतें हमारे घर और जिंदगी से दूर जाती है जब हम यीशु की तरह से रहते हैं, और एक दूसरे के विरुद्ध किया गया अपराधों के भी जमा करेगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि कोई अपने पड़ोसी के अपराधों को पश्चाताप करने पर भी जमा नहीं करेगा। वो स्वयं अपने आप को अपराधित ठहराएगा। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो पिताजी। प्रभु यीशु मसीह ने, जो शांति का राजकुमार है, हमें सिखलाता है कि घरों में शांति कैसे लाए जा सकते हैं। वो हमें आज्ञाकारी होना सिखलाता है, या दूसरे शब्दों में प्रभु के कार्य और शक्ति को उत्पन्न करो, जाओ और कहो मुझे माफ़ कर दो। वो हमें कोमल रहने को कहता है, ये दूसरे शब्दों में बन जाओ गुस्से से कोमल, नर्म, सुशील, जल्द गुस्से में नहीं, या आज्ञाकारी, विनम्र, दूसरों के दबाव से अपने आप को रोक लेना। वो हमें विनीत रहने को कहता है, ये दूसरे शब्दों में निश्चय, सुशील, आज्ञाकारी, इनके खिलाफ घमंड, आदेन, मगरूर या अभिमानी। मुझे माफ कर दो, मैं माफी चाहता हूँ जो मैंने किया। वो हमें धैर्य रहने को कहता है, ये दूसरे शब्दों में ऐसा स्वभाव जो भर को आनंद तक जेले फुसफुसाहट या परवाह किए बगैर या शांत रहे, जख्मी या अपमानित होने से आनंद तक। वो हमें सिखलाता है कि हम प्यार से भरे रहे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता हूँ। हाँ, वो हमें सिखलाता है कि हम प्राकृतिक स्वभाव के ना बने उस पिता की तरह इस कहानी में, जिसने ईश्वर से मदद की भीख मांगी है। हाँ, उसी तरह जिसे उस पिता ने अपनी पुत्री को अपने बहन में प्यार से लिया था, तो वैसा ही उधारकर्ता अपने बहन को आगे बढ़ाता है हमें लेने के लिए उसे समय जब हम सच्चा प्रश्चित करते हैं। वो हमें पढ़ाता है कि हम प्रभु मसीह के प्रश्चित द्वारा संत बन जाए और हम परमेश्वर की अच्छाई के साथ मिलाप करना और हम परमेश्वर की मित्र बन जाए। मैं उद्धारकर्ता से प्रश्चित करने के गवाही देता हूँ। सच्चाई और शक्ति से साफ करना, धोना का, और हमें और हमारे घरों को पवित्र बनाने का जब हम कोशिश करते हैं। वो परमेश्वर का महिमा है, वो पवित्र और धर्मा है, और उनका नाम निराला कहा लिया गया है। सलाहकार, शक्तिमान परमेश्वर, अंत तक का पिता, शांति का राजकुमार, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।